Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. आप सबका स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन प्रातःकाल भागवत के सत्संग में. श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के ऊपर चर्चा चल रही है. 15वां अध्याय चर्चा का विषय है. तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का सर्ग कहते हैं. सर्ग का मतलब सृष्टि जो भगवान विष्णु के द्वारा होती है, और फिर विसर्ग जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है. इस सृष्टि का इसमें वर्णन है. इस वक्त जो चर्चा चल रही है वो चर्चा ऐसे समझ लिए, ऐसे शुरू हुई है. ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान गर्भोदक्षायी विष्णु के नाभि से निकला कमल, और कमल कि पूरी डांडी में 14 लोक, उसके ऊपर कमल का पुष्प. कितना बड़ा होगा पुष्प आपके विचार में? कमल का पुष्प जितना ये ब्रह्मांड है उतना बड़ा था. छोटा नहीं था कमल का पुष्प, बहुत बड़ा था. लंबाई चौड़ाई लिखी है गर्भोदक्षाई विष्णु की, पूरे सागर के ऊपर जो गर्भ सागर अपना बनाया था शरीर से उसके ऊपर, तो वो जो कमल की डांडी है उसमें 14 लोक हैं पूरे. 7 नीचे के लोक, 7 ऊपर के लोक उसी के अंदर है. उसके ऊपर पुष्प, तो 14 लोकों के ऊपर जो फूल होगा वो छोटा तो नहीं होगा ना, तो बड़ा ही फूल होगा. तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई. ब्रह्मा जी को सृष्टि कुछ पता नहीं लगा. तपस्या का शब्द सुना, तपस्या की. तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन हुए. भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और कहा, अब आप पूर्ववत आप अपनी काम कीजिए, आप निश्चित रूप से आपके काम में सफल होंगे. तो ब्रह्मा जी ने पहले अपने मन से 4 बेटे पैदा किए, 4 कुमार सनकादि का बेटा संसार बना. बोला पापा नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे. चलो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उधर बाबा रोता हुआ आया, ये कथा यहाँ छोड़ते हैं. फिर और सप्तऋषि हुए, कर्दम की उत्पन्नी, कर्दम मुनि की उत्पत्ति हो गई, नारद आदि भी हो गए. संसार बढ़ नहीं रहा था, ब्रह्मा जी को चिंता हो गई. चिंता में ब्रह्मा जी सोचते सोचते कहा कि अब ऐसे काम चलेगा नहीं. अपने ही शरीर से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, स्वयंभू मनु सीधे हाथ से तरफ से और उल्टे हाथ की तरफ शत्रुपा की उत्पत्ति हुई. दोनों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, बोला अब आप सृष्टि करो. मनु जी बोलते हैं, बाबा सृष्टि करे कहाँ, इतना पृथ्वी है ही नहीं. पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि कहाँ करे. तो ये चिंतन में ब्रह्मा जी पृथ्वी का चिंतन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की नासिका से छोटा सा मटर के चने जितना, मटर जितना एक निकला जीव, वो एक देखते देखते बड़ा हो गया और वो वाराहदेव प्रकट हो गए. तो पृथ्वी को लाने के लिए बाहर गए, तो पृथ्वी को वहां से ला रहे थे. कहाँ से? गर्भोदक्ष सागर से. तो हिरण्यकश्यप रास्ते में वरुण देव के पास गया था. वरुण देव को बोला थोड़ा सा हमारे साथ प्रणाम है, आपको थोड़ा युद्ध करना है, टाइम है आपके पास. वरुण देव ने कहा नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए विष्णु से जाके तुम बात करो, तो तेरे को कुत्ते की तरह मारेगा तब तुम्हें पता लगेगा. पता कैसे लगेगा? वो नारद जी ने, नारद जी मिल गए, बोला कहाँ असुरराज जा रहे हो? बोला विष्णु. बोला वो देखो जा रहे हैं, पृथ्वी को उठा रहे, यही है. चलो पृथ्वी को स्थापति इनका. अब ये बात के बीच में बात ऐसे आती है दित्ति के गर्भ की, 14वें अध्याय में. दित्ति के गर्भ की, कश्यप को दित्ति ने यज्ञशाला से पकड़ के बोला कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए संध्या काल के समय में. तो कश्यप जी और दित्ति के, दित्ति ने फिर पश्चाताप भी किया, तो कश्यप ने कहा ठीक है, लेकिन आपने 4 अपराध कर दिए हैं, इसलिए आपके पुत्र बहुत बड़े असुर होंगे, और ये असुर सारे देवताओं को बड़ा दुख देंगे, और भगवान इसको मारने के लिए स्वयं आएंगे. दित्ति कहती है भगवान आएंगे, अच्छा मेरे बेटों का उद्धार तो होगा, ब्राह्मण के श्राप से मरते तो अधोगति होती। लेकिन फिर पश्चाताप के कारण दिति को कश्यप जी ने कहा कि अब तुम पश्चाताप कर रही हो, अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए आपका पोता जो होगा बहुत बड़ा भक्त होगा, उसके नाम लेने से लोगों के दिल में भक्ति आ जाएगी, प्रहलाद महाराज आपके घर में पोता होगा। तो ये यहाँ 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वें अध्याय में दिति ने कहा ऐसे दो बदमाश मेरे पेट में आ गए हैं, संसार को दुख देंगे, अंदर ही पड़े रहें तो अच्छा है। 100 साल तक तो उनको बाहर निकलने नहीं दिया, लेकिन वो अंदर बैठे हुए इतना उत्पाद मताया कि अंधकार हो गई। अभी दिति के गर्भ में बाहर निकले नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, रावण को तो दे दिया। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए कहा मुझे वरदान दीजिए, तब सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को कहा इसको बगैर वरदान के सबको मार रहा है, वरदान के बाद ये क्या करेगा, ये चलता है तो हजारों लोग पहले ही मरते हैं इसके पांव के नीचे, वरदान के बाद तो ये मुसीबत कर देगा, थोड़ा सोच के वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बुला के कहा इसकी जीभा के ऊपर बैठ जाओ, जब ये वरदान मांगे। कुंभकर्ण ने कहा ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए, मैं सोया रहूं। वो सरस्वती ने ये कहला दी। तो ये ऐसा गर्भ में बैठे हुए इतना अंधकार कर दिया, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को कहा कि बाबा हम समझते हैं कि ये अंधकार हो रहा है, कारण इसका दिति के गर्भ में है। कौन ये मुसीबत कहां से आई, कैसे हुआ? तब ब्रह्मा जी कथा बताना शुरू किया कि बात हम आपको बताते हैं, असल में यहां ऐसे लिखा नहीं है, लिखा ये कि चार कुमार ब्रह्मा जी के पास आए, बोला पिताजी नीचे के 7 लोगों से हम घूम के आए, पाताल से लेकर रसातल तक घूम लिया, ऊपर हमने भूलोक से लेकर आपके सत्यलोक तक देख लिया, लेकिन सब जगह दुख तो है ही, स्वर्ग में भी दुख है, इतना दुख है कि ईर्ष्या बहुत करता है, इंद्र कोई यज्ञ करता है तो उसके यज्ञ को जरूर विध्वंस इंद्र करता है, अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, तो शांति सुख तो कहीं हमको मिला नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा इनको थोड़ा सा, बच्चे तो अच्छे हैं, वेद ज्ञा तो हैं, ब्रह्म वेद तो जानते हैं, लेकिन अभी तक थोड़ा सा अहंकार है इनमें, और शांति और सुख के लिए इसको मैं शिक्षा दूंगा तो ये सीखेंगे नहीं, वैसे भी बाप से बेटा सीखता कम है, ये दुनिया का नेम है, मास्टर जी का बेटा हमेशा अनपढ़ नहीं रहे तो बदमाश जरूर होता है, दुनिया का नेम ऐसा है। ब्रह्मा जी का इसको सिखाने के लिए अब वैकुंठ नाथ के पास भेजना चाहिए। तब कहा आप वैकुंठ चले जाओ, बड़ा सुंदर है। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरणा दी वैकुंठ जाने की। तो ब्रह्मा जी कहे मेरे बेटे वैकुंठ के दर्शन के लिए गए थे, तो वैकुंठ के लिए दर्शन को बेटे गए थे, उससे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैकुंठ का दर्शन बगैर तपस्या के नहीं मिलता, भगवान की भक्ति के बगैर नहीं मिलता, वहां हर एक को प्रवेश भी नहीं होता है। तो ये भी ऐसे भाव है जैसे ज्ञान तो बहुत है उद्धव को, लेकिन ब्रज में भेजना है ताकि प्रेम भक्ति का प्रवेश हो। ये बहुत बड़े ज्ञानी तो हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं चारों कुमार, लेकिन जब तक लेश मात्र भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक आनंद, अलौकिक आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा ने भक्ति का प्रसाद देने के लिए अपने बेटों को वैकुंठ भेजा, ये ब्रह्मा जी ने ऐसे अपने बेटों को भेजा। अब ब्रह्मा जी के मेरे बेटे जब वैकुंठ जा रहे थे तो मानो बेटों ने पूछा वैकुंठ कैसा है, तो वैकुंठ का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे कि वैकुंठ ऐसा 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 वैकुंठ है, उसके अंदर क्या क्या चीज कैसी है, हर एक चीज चिन्हमय है। पहले बात यह समझने चाहिए कि वहां जड़ है ही नहीं, वहां जड़ है ही नहीं, सब चीजें वहां चिन्हमय है, पेड़ भी वहां व्यक्ति है, और जल भी वायु भी पुष्प भी गंध भी सभी वहां चिन्हमय है, कोई जड़ चीज नहीं, और सभी केवल भगवान की सेवा के लिए ही है, उनका स्वतंत्र भगवान से अलग कोई भी भोग की भावना नहीं है, ये वैकुंठ का विशेषता है, और कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, एक दूसरा दूसरे की सेवा से संतुष्ट होकर उसकी बहुत सराहना करता है, लेकिन उसको उससे ईर्ष्या नहीं करता है। इस वर्णन में कल हमने सुना बहुत सुंदर, राधा कृष्ण प्रभु कर रहे थे, जो 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 पक्षी है वैकुंठ के पक्षियों का कल वर्णन सुना, कबूतर पहला नाम कबूतर का था, और फिर था कोकिल कोयल, कोयल की बात की थी, जिसके बच्चे दूसरा कोई पालता है उसके ऊपर वो वर्णन कर रहे थे। कल मैं किसे चर्चा कर रहा था, कौए की कौई नहीं होती, कौए की कौई सुनिए क्या आपने, कोयल का कोयला नहीं होता। तो उसका पति नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा झमेला है क्या? नहीं, मुझे किसी ने बताया कि ऐसे मान्यता है कि कोयल का पति नहीं है और कौए की पत्नी नहीं है, यही दोनों आपस में टेम्पररी मैरिज करते हैं। तो इन पक्षियों का वर्णन था कि ये सारे दिव्य भगवान के धाम में जो रहते हैं वो सब भावरे का बड़ा आदर करते हैं। जैसे ही वो भ्रमर गुंजान करने लगता है ये सब शांत होके भगवान के गुणगान सुनते हैं। तो कल न ईर्ष्या करके उनका ये वर्णन सुना था। आज वर्णन है पुष्पों का, आज वर्णन है पुष्पों का। कहां के पुष्प? वैकुंठ के पुष्प। वो पुष्प ऐसे कभी नहीं सोचना कि वो पुष्प ऐसे हैं जैसे हमारे को सुबह वो भक्त देता है और हम ऐसे करके और कदम के पेड़ के चारों डाली के ऊपर रख देते हैं। ऐसे वहां पुष्प रखोगे ना वो आपको पकड़ेगा कान से, क्या कर रहे हो भगवान की सेवा में लगने की चीज को ऐसे नीचे रखते हो, ये तदीय वस्तु है, समझते नहीं हो, वो तो पकड़ लेगा। हरे कृष्णा। तो वो पुष्प दिव्य हैं, वो पुष्प सारे भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं और भगवान की सेवा के अलावा और कुछ जानते ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि वैकुंठ में गोलोक में वृक्ष भी अपनी इच्छा से भगवान की सेवा के लिए वृक्ष बनते हैं जो बहुत बड़े भक्त होते हैं। पुष्प भी बड़े भक्त होते हैं जो पुष्प बनते हैं भगवान के चरणों में अर्पण होने के लिए। तो ये दिव्य पुरुष है जो अपने आप को अपनी इच्छा से उस रूप में स्थापित करते हैं। तो आइए ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णन है। अब ये ब्रह्मा जी का वर्णन है इसलिए इसके ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी जो कहता है वो सत्य है, उसी ने वेद सुना। हम ब्रह्मा जी की बात के ऊपर संशय, पता नहीं ब्रह्मा जी कह रहा है सच है कि नहीं, चार मुंह है, पता नहीं कौन से मुंह से क्या कह रहा है। हम दुनिया वालों की बात, साइन वो हमारे, ये तो साइंटिस्ट ने ये कहा है इसको हम मान लेते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा है उसके ऊपर हमको विश्वास नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं और इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। वैकुंठ के पुष्पों का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। आइए इन पुष्पों के नाम पढ़ते हैं। ये वैकुंठ के पुष्प हैं जो भगवान को बहुत प्रिय हैं और सारे ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। पुष्पों के नाम पहला पढ़ लीजिए, मंदारा, कोंदा, कोरबा, उत्पला, चंपका, अरणा, पुनागा, नागा, बकुला, अंबुजा, पारिजाता, गंधे, अर्चिते, तुलसिका, आभरणेना, तस्याः, यस्मिन् तपः सुमनसः बहु मानयन्ति मंदार कुंद कौरबोत्पल चंपाकरण पुनाग नाग बकुलं भुजपारिजाता गंधे अर्चिते तुलसी का भरणे न तस्या यस्मिन् सत्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति मंदार कुंद करवोत्पल चंपकारण पुनाग नाग बकुलं भुज पारिजाता गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या
जस्मिन् सतप सुमनसो बहुमानयन्ति मन्दार कुन्दमावत पल चंपाकरण पुनाग नाग मुज पारिजाता गंधोर चिते तुलसी का भरणे न तस्या यस्मिन् स्तपः मनसो बहुमानयन्ति मन्दार कुन्दज चम्पारण पुनाग नाग बकुलम्भोज पारिजाता गंध्यर चैत तुलसी का भरणे न तस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति मन्दार कुन्द बकुल चम्पारण ले अर्चिते तुलसी का भरणे न तस्या यस्मिन् स्तपः मनसो बहुमानयन्ति माताजी पुनाग नाग बकुलं भुज पारिजाताः ये अर्चिते तुलसी का भरणे न तस्या यस्मिन् तपः मन्दार मन्दार कुन्द कुन्द कुरब कुर्बक उत्पल उत्पल चंपक चंपक अरण अरण फूल पुनाग पुनाग नाग नाग केसर बकुल बकुल अंबुज कुमोदनी पारिजाता पारिजात गंधे सुगंध अर्चिते पूजित होकर तुलसी का तुलसी आभरणेन माला से तस्या उसकी यस्मिन् जिस वैकुंठ में तपः तपस्या सुमनसः अच्छे मन वाले वैकुंठ मन वाले बहु अत्यधिक मानयन्ति गुणनान करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूज्य अभय शरणार भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यद्यपि मंदार कुंद कुर्बक उत्पल चंपक अरण पुनाग नाग केसर बकुल कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी के पत्तियों की माला पहनते हैं। तो बहुत सुंदर पुष्पों का पहले वर्णन है। मंदार कुंद, कुंद बहुत सफेद होते हैं, दांत कुंद जैसे बोलते हैं, पंक्तियां बहुत सुंदर उसकी होती हैं। किसके कुंद जैसे दांतों का वर्णन है भागवत में? किसका है वर्णन? रुक्मणी का। रुक्मणी जब बार आती कुंद जैसे चमकते, उसके मोतियों जैसे दांत
और मुस्कुराती देख के सब मूर्छित हो जाते हैं। वहां उनके दांतों का बहुत सुंदर वर्णन है। कुंद के पुष्प जैसे दांत बोलते हैं, दांतों का वर्णन करते हैं ना, उपमा किससे देते हैं, है किसी को ध्यान में नहीं? कुंद कहते हैं ना, हाँ, कुंद कली नाग केसर अंबुज पारिजात ये सब उत्तम पुष्प वैकुंठ में है जो भगवान की सेवा में लगते हैं। लेकिन ये सारे पुष्प जिनका नाम हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, ये सब पुष्प तुलसी की तपस्या से पहले से ही परिचित है और तुलसी की महानता को जानते हैं कि भगवान अपने गले में माला के तौर उसको माला कल के पहनते हैं, इसलिए तुलसी का आदर करते हैं ये सब। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य शुरू होते हैं यहां पर, तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। तुलसी कितनी महान है इसका यहां बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियों पत्तियां भक्ति में अतीव महत्वपूर्ण है। तुलसी का पौधा अथवा पत्तियां भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अथवा भगवान कृष्ण की भक्ति देने के लिए तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। इसलिए सब मंदिरों में सुबह शाम तुलसी की आरती होती है, तुलसी को जल दिया जाता है। तुलसी कृष्ण प्रियासी, तुलसी बहुत कृष्ण को प्रिय है। और हम सुबह प्रार्थना क्या करते हैं तुलसी को, क्या दूसरी लाइन क्या है, कृष्ण भक्ति प्रति देवी, कृष्ण भक्ति प्रति देवी, वो कृष्ण की भक्ति देने वाली है तुलसी महारानी। और कृष्ण भक्ति में क्या मांगते हैं, सेवा अधिकार दियो, भगवान की सेवा का अधिकार दियो और कुंज में वास दो। ये रोज सुबह हम गाते हैं, तुलसी की महिमा गाते हैं। तुलसी का भगवान के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है उसका वर्णन प्रतिदिन हम करते हैं। तुलसी, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, तुलसी के पत्ते और तुलसी का पौधा भक्ति में अतीव महत्वपूर्ण है। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सींचें तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियां एकत्र करें। भक्तों को प्रतिदिन तुलसी को जल देना चाहिए और तुलसी, भगवान को कोई चीज भी बगैर तुलसी के अर्पण होती ही नहीं, न चंदन बगैर तुलसी के अर्पण होता है, न प्रसाद भोग भगवान को बगैर तुलसी के अर्पण होता है, और माला भगवान को तुलसी की ही अर्पण होती है। चंदन लगाते हैं तो तुलसी दल के साथ लगाते हैं चरणों में, तो भगवान की जो भी पूजा होती है उसमें तुलसी दत्त तुलसी दल अनिवार्य है, वो नहीं है तो भगवान किसी को स्वीकार ही नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं हर भक्तों के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुलसी को रोज जल दें और तुलसी की पत्तियों को एकत्रित करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी, अब प्रभुपाद जी को कोई बात याद आ गई, कि कहा तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो बैंगन का सींचन होगा। बैंगन ब्रेन स्वामी, बैंगन ब्रेन स्वामी, उसके दिमाग में बैंगन घुसा हुआ था। अरे और किसी अच्छी सब्जी का भी नाम याद नहीं था, उसको बैंगन ही याद आया। जिसमें कोई गुण नहीं है वो तो ठीक है, निर्गुण स्वामी होगा तो निर्गुण की ही बात करेगा ना, बैंगन में कोई गुण तो है नहीं। किंतु हाँ, सींचने से क्या क्या था? बैंगन सींचने से कुछ फल मिल सकेंगे किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ। वो स्वामी जी ने ऐसे कह दिया कि बैंगन को पानी देना चाहिए, तुलसी को पानी देने से क्या लाभ। प्रभुपाद को बहुत अच्छा नहीं लगा ऐसी, ऐसे बहुत से महामूर्ख हैं इस दुनिया में जो शास्त्रों का खंडन करने में उनको अच्छा लगता है। असल में किसी को बहुत प्रतिष्ठित और लोगों में ज्यादा मशहूर होना है ना कि लोग उसको जाने, तो शास्त्र का खंडन करना चाहिए, लोग कहते हैं अरे ये तो बड़े शास्त्र का खंडन करता है, ये शास्त्र से ज्यादा जानता है, इसका मतलब है लोग उसके पीछे लगते हैं। पागल है ये दुनिया की शैली है, इसलिए तो लोग नया नया मत बनाते हैं। शास्त्र का खंडन नहीं करेंगे तो नया मत कैसे बनेगा, शास्त्र के ऊपर चलेंगे तो सबको एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा ना। ये शैली इसलिए बनाई है लोगों ने, हमने देखा है पॉलिटिकल लोग बड़े आदमी को गालियां देते हैं तो एकदम मशहूर होते हैं, पता मालूम है उनका काम ही है, बड़े आदमी को गालियां जितने ज्यादा देंगे उतना जल्दी आपका नाम हो जाएगा संसार में। तो ये लोग अब इसको बैंगन मारा, ये बड़ा अद्भुत है कि बैंगन को जल दिया करो, तुलसी को जल मत दिया करो। प्रभुपाद जी कहते मूर्ख प्राणी, प्रभुपाद ने लिखा मूर्ख, मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ अत्याचार करते हैं। कैसे लोग लोगों को भ्रमित कर देते हैं। अब उसके भी शिष्य कभी तुलसी को घर में से निकाल दिया होगा, बैंगन सब आरोपण कर दिए होंगे, घर में बैंगन के पौधे लगाए। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। दूसरा विषय प्रभुपाद जी ले रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता। यह बात फूलों तक में लागू होती है, फूलों में भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता। जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं, चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया वहां के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट हैं। तो दो बातों को चर्चा करने की आवश्यकता है आज के श्लोक में, तुलसी की महानता और वैकुंठ में अथवा आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता। तो तुलसी तो बहुत सारे भक्तों को तो तुलसी का वैसे परिचय है अपने आप में, तुलसी किताब में लाया नहीं, तुलसी के विशेष कुछ नाम है जिनका रोज बृंदावनी, तुलसी का एक नाम है बृंदावनी, बृंदावन में रहने वाली तुलसी का मतलब जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, अतुलनीय है, उसके बराबर और कोई नहीं है। तुलसी का मतलब है जिसकी तुलना की नहीं जा सकती, अतुलनीय। तो ये तुलसी वैसे तो ब्रज की गोपी है, वैसे ब्रज की गोपी है, इसलिए कृष्ण प्रिय से, नहीं तो कृष्ण प्रिय से कैसे होगी। कैसे भी राधा रानी के संसार के लिए कृपा की, लेकिन एक दृष्टि से उसको साप दे दिया कि तुम पृथ्वी के ऊपर जन्म ले लो। भगवान श्री कृष्ण से तुलसी गोपी के रूप में वृंदा तो राधा रानी देख लिया तो उसको मानव शरीर धारण करने का साप दे दिया। और शंकर जी का एक महान भक्त कुशध्वज, जिसके पास शंकर जी बहुत दिन रहे, वो शंकर के अलावा और किसी की पूजा करे ना, ना विष्णु की करे ना किसी और की करे, कोई इसको कहने वाला नहीं मिला। सूर्य ने तो उसको जरा डांट दिया तो वो सूर्य के पीछे शंकर जी त्रिशूल लेके भागे। सूर्य डरता हुआ ब्रह्मा जी के कहा पास गया, ब्रह्मा जी ने शंकर को देखा, ब्रह्मा जी भी डरे, सब वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में वहां पहुंच गए, उधर आधा घंटा गुजरा, भगवान वैकुंठनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा भोलेनाथ आपने मेरी पूजा की, अच्छा किया, लेकिन वो तेरा चेला कुछ धज कब का गया, भगवान को प्यारा उधर तो कई कल्प बीत गए, उसके दो बेटे भी मर गए, अभी उसकी तीसरी पीढ़ी है। और उस तीसरी पीढ़ी में क्योंकि सूर्य के शराब से उसका सब धन नाश हो गया है, वो लक्ष्मी की प्रार्थना बहुत कर रहा है, इसलिए लक्ष्मी अपने अंश रूप से उसके घर में प्रकट होना चाहती। तो वैकुंठ नाथ के ये कहने से उसके घर में जो ये पूरी पीढ़ी राजाओं की आ रही है, बहुत सुंदर बालिका पैदा हुई, उसका नाम हुआ तुलसी। लड़की के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर तुलसी का प्रकट्य हुआ। और तुलसी की यहां शब्द, तुलसी ने तपस्या की। कहां तपस्या की तुलसी ने? तुलसी ने जाके बद्री का आश्रम में तपस्या शुरू कर दी और तपस्या की। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए? बोला वर क्या चाहिए, मैं तो कृष्ण प्रियसी हूं, वापस मुझे कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो यह रास्ता बताओ। बोला तुम्हारा वैकुंठ नाथ से विवाह होगा, मैं बताता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन अब इस वक्त श्रीधामा को भी शराब राधा रानी ने दिया है, वो शंखचूड बन के दानव कुल में यहां प्रकट हुआ है। श्रीधामा भगवान का गोप सखा है, ब्रजलीला में श्रीधामा, वो भी एक बार ब्रजा से भगवान श्री कृष्ण ब्रजा के साथ रासलीला में भाग ले रहे थे। देखा राधा रानी ने, ब्रजा तो डर के मारे नदी बन गई ब्रजा, और राधा रानी कृष्ण को कुछ कह रही थी, कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे वो, लेकिन श्रीधामा को क्रोध आ गया। बोला क्या कह रही हो? उसने कहा तुम जाओ दानव कुल में जन्म ले लो। तो शंखचूड के रूप में दानव बन के उसने धरती के ऊपर जन्म लिया है। तुलसी तुम जब वहां गोपी थी, श्रीधामा तुमसे तुमको देखता था प्रेम की नजर से, लेकिन राधा रानी से डरता था, इसलिए तुमसे ज्यादा उसने संबंध नहीं बनाए, अब तुम उसके साथ विवाह कर लो। ये ब्रह्मा जी कह रहा है। फिर तुमको भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त होंगे। सो तुलसी की तपस्या कहां तुलसी ने की, जिसका वैकुंठ के पुष्पों को ज्ञात है, बद्री का आश्रम में तुलसी ने बहुत बड़ी तपस्या की। और फिर उसका विवाह शंखचूड के साथ हुआ, और शंखचूड नहीं मर रहा था, देवता परेशान थे। तो सती नारी है उसकी घर में, तुलसी इसलिए नहीं, तो सती का सत्य कैसे भंग किया जाए। भगवान विष्णु शंखचूड के रूप में आए। अब तुलसी कहती है ये शंखचूड है भी नहीं, लेकिन कहा तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोला मैं आपको जान गई, लेकिन आप अपने भक्तों का इतना दुख और संकट देते हो, पत्थर दिल हो गया, तुम पत्थर बन जाओ। तुलसी ने पत्थर बनने का श्राप दे दिया भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु बन गए सालंग राम जी, और तुलसी देवी बन गई गंडकी नदी जिसमें सालंग राम निवास करते। और जो केस उसके थे तुलसी के, उसके द्वारा तुलसी के पौधे संसार के उधार के लिए प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने उनको दिया वरदान कि जो तुम्हारा पेड़ लगाएगा, पौधा लगाएगा, जल से सिंचन करेगा, पत्ते का आपका दर्शन करेगा, पत्ते को स्पर्श करेगा, आपकी छाया में रहेगा और पत्ता मुझे अर्पण करेगा, वो निश्चित रूप से मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। तो तुलसी को ये सब वरदान भगवान विष्णु ने बाद में दिए। बहुत लंबा चौड़ा महात्म तुलसी का ब्रह्म विवर्त पुराण में है, विशेष रूप से ये विवर्त पुराण में काफी लंबा चौड़ा इसका वर्णन है। तो तुलसी की तपस्या जिससे तुलसी फिर पूछा कि ये तो सब ठीक है, लेकिन वापस मुझे कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? तब ब्रह्मा जी ने 16 अक्षर के राधा के मंत्र में तुलसी को दीक्षित किया। बोला ये मंत्र करने से तुम्हें राधा रानी की प्रसन्नता प्राप्त होगी, और पुनः तुम कृष्ण की सेवा में कृष्ण के प्रेम की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो विशेष 16 अक्षर का ये मंत्र ब्रह्मा जी ने राधा रानी के प्रसन्न करने का तुलसी को दिया। और एक स्थान में इसी ये 19वां श्लोक है, 22वें श्लोक में आएगा कि लक्ष्मी जी तुलसी को लेकर भगवान विष्णु की पूजा करती है। दो जगह तुलसी का वर्णन इस अध्याय में है। और गर्ग संहिते में ऐसे लिखा है कि कृष्ण से राधा रानी रूठ गई, तो अब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको ये बताया गया नारद जी के द्वारा कि तुलसी का मंदिर बनाओ। हमारे माधव महाराज तुलसी का मंदिर बना रहे हैं गौशाला में। तुलसी का मंदिर कैसा बनाया उन्होंने राधा रानी ने, और फिर तुलसी की पूजा की कृष्ण को वापस प्राप्त करने के लिए राधा रानी ने तुलसी की पूजा की, और गोलोक वृंदावन में व्रज नदी के किनारे तुलसी है, वो श्री कृष्ण स्वयं उस तुलसी की पूजा वहां करते। ये वर्णन वैकुंठ में तो तुलसी है लेकिन गोलोक में भी तुलसी है और ब्रज नदी के तट के ऊपर तुलसी है। तो यहां राधा रानी को कहा गया एक साल तक तुलसी का मंदिर बनाओ, और तुलसी का जो उन्होंने मंडप बनाया, सोने की दीवार, सीमेंट नहीं, सोने की दीवार लिखा है, और जो हीरा मोती मणियों से चारों ओर से परकोटा दिया, और हर मौसम के अंदर, एक मौसम के अंदर गन्ने के रस का सिंचन किया, एक में आम के रस का सिंचन किया, अंगूर के रस का सिंचन किया, ऐसे 12 अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग सिंचन करके तुलसी को इतना प्रसन्न किया राधा रानी कि तुलसी उनके सामने वृंदा देवी के रूप में प्रकट हुई। और वृंदा देवी के रूप में प्रकट हुई, राधा रानी को आलिंगन करके तुलसी ने कहा आपको ये पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप तो नित्य श्री कृष्ण स्वरूप आई है, कृष्ण के रूप से ही प्रकट हुई है, लेकिन आपने संसार को कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का ये मार्ग बताया है। ये वृंदा देवी राधा रानी को कह रही है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपने लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, उदाहरण बनने के लिए ये पूजा की है, और लोग इस तरीके से व्रत रख के तुलसी की, आजकल भी तुलसी के उपवास विशेष रूप से 3 दिन का होता है, स्त्रियां करती हैं तुलसी की पूजा करती हैं, ये अभी होता है कि नहीं होता है, हमने अपने जमाने में गांव में हजारों हजारों स्त्रियां तुलसी की 3-3 दिन का तुलसी का व्रत रखती थी, कुछ खाती नहीं थी तुलसी का, सुबह शाम जो है नीचे सोना और 3 दिन तक पूजन पूरा करती थी तुलसी का। विशेष ये महत्व गोलोक की बात चल रही है, वहां तुलसी का बहुत सुंदर मंदिर राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया, और वृंदा देवी गोपी के रूप में, वृंदा देवी ब्रज के अंदर भगवान के सारे लीलाओं का संचालन करती। वृंदा देवी के रूप में विशेष सेवा जो है तुलसी की, वृंदा देवी की जो, तो भगवान के लीलाओं का कहां कौन से लीला कब घटन होनी है उसका सारा संचालन तुलसी देवी करती। तो ये तुलसी की तपस्या और तुलसी को भगवान का वरदान और तुलसी की महिमा और तुलसी का महत्व जो प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए। फिर तो यहां लिखा है तुलसी की माला भक्त गले में डालते हैं, तुलसी कानों के अंदर डालते हैं, हाँ सोना वोना नहीं डालते थे पहले साधु, तुलसी के ही लोंग बना देते थे, तुलसी का कान में डाल देते थे, और अंत समय में तुलसी का काष्ठ किसी के सर के ऊपर लगे तो यमराज ही नजदीक नहीं आता है, दूतों की तो बात ही क्या है कि यमराज भी उसकी तरफ नहीं आता है। ऐसे तुलसी की विशेष वर्णन है, जिस घर में तुलसी है वहां यमराज का प्रवेश निषेध है, तो इसलिए भक्त तुलसी के माला का धारण करते हैं जप के लिए, तुलसी की माला सात्विक और भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये सब जितने भी पुष्प हैं ये असल में शुद्ध सत्व गुण में, इनमें रजोगुण नहीं है, इसलिए ईर्ष्या नहीं है, तमोगुण है ही नहीं, रजोगुण है ही नहीं, सत्वगुण भी नहीं है कि अहंकार हो। तो कुमारों को तो थोड़ा सा ज्ञान का अहंकार होता है कि आदमी ज्ञानी है, रोज टाइम से उठने वाला है, उसको अहंकार हो जाता है। एक भक्त रोज 3:30 बजे उठने का नियम था, और कभी नहीं उठ पाता था तो कोई आके उसको उठाता था। एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे कौन उठा रहा है, तो उसने देखा उठा कौन रहा है, बोला कौन हो, बोला मैं कलयुग हूं, बोला तुम मुझे उठा क्यों रहे हो, बोला मैं तुम्हें इसलिए उठाता हूं, तुम उठोगे ना तो तुमको अहंकार होता है, मैं रोज 3:30 बजे उठता हूं सबसे पहले, तुम नहीं उठोगे तो तुमको फिर चिंता होगी, फिर तुम भगवान की भक्ति करने लगो, तुम अहंकार होगा तो मेरा चेला बने रहोगे, इसलिए मैं तुम्हें उठाता हूं, मैं अपना चेला बना के लेने के लिए तुम्हें रोज उठाने के लिए आता हूं कि तुमको अहंकार बना रहेगा ना, मेरे जैसा कोई है नहीं, सबसे पहले मैं उठता हूं, तो मैं तुम्हारी सेवा इसलिए करता हूं कि तुम मेरे चेले हो बने हुए। तो अहंकार बहुत बड़ी भारी चीज है, तो क्रोध तो आ नहीं सकता है, कुमारों को क्रोध कैसे आएगा, वो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में, लेकिन उधर कुमारों को क्रोध आता है तो भगवान की इच्छा, लेकिन फिर भी इसी तुलसी के सुगंध से, इसी तुलसी की सुगंध से जिसकी यह महिमा है, ये 4 कुमार ब्रह्म के सुख को भूल गए और शुद्ध भगवान की प्रेम भक्ति में प्रवेश किया। इसी तुलसी की कृपा से भगवान विष्णु जब भागते हुए आए दरवाजे के ऊपर, तो भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी चंदन के साथ हो, उस तुलसी का जो सुगंध आया और इन कुमारों की नासिका में प्रवेश किया, तो कुमारों का सारा मानसिकता बदल गई। अब भगवान के कथा और लीला में उनको आनंद आने लगा। तभी तो भागवत की कथा ये कुमार बैठ के नारद को बता रहे हैं। ये चार कुमार आनंद वन में हरिद्वार में नारद जी को भागवत की कथा बता रहे हैं, क्योंकि वैकुंठ नाथ के दर्शन करके तुलसी की कृपा प्राप्त करके भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की थी। तो तुलसी जिसका वर्णन यहां है, इसी तुलसी की भगवान के चरणों में लगी हुई सुगंध से चार कुमारों को जो 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 ज्ञानी थे, जिज्ञासु के ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म में निष्ठ थे, वहां से परिवर्तित होके भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो तुलसी उनको भी भक्ति देने वाली है। हाँ, क्या कहते हैं, कौन से रूप राशि? हाँ, युगल रूप राशि, कुंज दियोवास, नयने हरिव सदा युगल रूप राशि, ऐसे गाते हैं रोज ना। वैष्णवराज हंस रहा है कि किसी और ने इस तुलसी का बड़ा महत्वपूर्ण अनुवाद किया है, डॉलर रूप राशि, अमेरिका दियो वास। इसी का परिवर्तन जो भक्तों के द्वारा है, युगल रूप राशि नहीं, डॉलर रूप राशि, अभी तो यूरो रूप राशि हो गई है। युगल रूप राशि, युगल रूप में हमारा रस हो, प्रेम हो, वो प्रदान करने वाली आप हो। युगल मतलब राधा कृष्ण, युगल का मतलब राधा कृष्ण, और भक्ति विनोद के भाव में जाओगे तो युगल महाप्रभु है, दोनों उसके अंदर है। युगल है कि राधा कृष्ण दोनों उसके अंदर है, और महाप्रभु को आलिंगन करने में कोई आपत्ति नहीं है, उनके चरणों को पकड़ने में आपत्ति नहीं है, राधा कृष्ण का फिर भी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। तो महाप्रभु इसलिए अति उदार है, अति उदार अवतार है चैतन्य महाप्रभु, वो भी युगल है। राधा कृष्ण दोनों का मिश्रित मिलित है। जो एक कृष्ण अपने से अलग करके राधा को दो हो गए थे आनंद लेने के लिए, वो दोनों मिलके एक होके चैतन्य महाप्रभु बनके स्थित धराधाम के ऊपर आए। तो ये तुलसी महारानी की विशेष महिमा है। वृंदा देवी के नाम से इसके आठ नाम विशेष है जिनको लेना चाहिए, और तुलसी को विधि विधान बहुत अपने पास है कि तुलसी का पालन कैसे करना चाहिए, देखभाल कैसे करनी चाहिए। प्रणाम तो रोज करते ही है, वृंदाय तुलसी देवाय रोज कहते हैं। कृष्ण भक्ति प्रति देवी हमारे को कृष्ण भक्ति प्राप्त कराने वाली है, तो ये तुलसी की महिमा है। और दूसरा विषय इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वैकुंठ में अथवा आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता है। ईर्ष्या का मतलब दूसरे की अच्छाई देख के और हृदय में जलन हो, अपने हृदय में जलन हो दूसरे का अच्छाई और बड़ाई देखकर, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। और सूय भी इसी को सूय बोलते हैं। सूय का मतलब जिसको सुई लगती है, अंदर सुइयां लगे, दूसरे को सुख दिखे और अपने को सुइयां लगे। सूय को दूसरा अर्थ कोई भी हो, लेकिन सुई चुभना इसका अर्थ है। सुई चुभता है दूसरे को, अरे वो तो उसको दूसरे का सुख देखे, दूसरे की भक्ति देखे, अंदर सुइयां चुभने लगे जिसको। अनसूया, अनसूया का मतलब दूसरे को देखकर, अच्छा देखकर हृदय ठंडा हो जाए, कोई दर्द ना हो, और उसकी प्रशंसा करे, उसकी महानता गाए। जैसे ये सब पुष्प कहते हैं तुलसी की तपस्या से हम अवगत है, तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, जिसको भगवान अपने गले में माला के रूप में धारण करते हैं। और ये तुलसी भगवान के छाती के ऊपर माला के रूप में रहती है, इसलिए लक्ष्मी कभी तुलसी भगवान की छाती को छोड़ती ही नहीं है, ऐसे लिखा है। लक्ष्मी भगवान की छाती को क्यों नहीं छोड़ती है वक्षस्थल को? क्योंकि तुलसी का सुगंध वहां सदा के लिए बसा रहता है, और इसलिए तुलसी की महिमा के कारण वो लक्ष्मी भी वहां छाती के ऊपर, ऐसे इस तुलसी की महिमा में वर्णन है। तो ईर्ष्या और द्वेष, द्वेष मतलब दूसरे को नीचे गिराने के लिए प्रयास करना, उसको टांग से खींच के नीचे गिराना, द्वेष, ये दो आध्यात्मिक जगत में नहीं होते। इसलिए भगवान का मंदिर आध्यात्मिक जगत से अलग नहीं है। मम निकेत निर्गुण मम निकेत, भगवान का मंदिर जहां भगवान रहते हैं वो तीनों गुणों से परे हैं, वो भगवान का धाम ही है। इसलिए भगवान के धाम में रहने वाले भक्तों के अंदर द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लिए शिक्षा इस श्लोक से ये है कि मंदिर के अंदर रहने वाले भक्तों में द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जिस भक्त के अंदर अच्छा गुण दिखे उसकी प्रशंसा करो। प्रभुपाद जी की शिक्षा ये है, हर एक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं और हर एक व्यक्ति में कुछ कमजोरियां और अवगुण भी होते हैं। सब गुण किसी एक में नहीं है और सब अवगुण भी किसी एक में नहीं है। तो जिसमें जो अच्छाई दिख जाए भगवान के भक्ति की, उसको थोड़ा सा हवा दो, उसको पंखे की तरह छोटी चिंगारी भी अच्छाई की हो ना, उसको हवा दो ताकि उसकी अच्छाई इतनी बढ़े कि उसकी बुराई उसके नीचे छुप जाए। तो भक्तों के अंदर अच्छाई देखो और सब भक्तों में कोई ना कोई अच्छाई दिखेगी। प्रभुपाद जी की दृष्टिकोण से पागल अंदर आया और एक पेपर, वो भी टिश्यू पेपर, टॉयलेट टिश्यू पेपर लेके आया, ऊ करता अंदर आया, छोड़ के चला गया। सबने कहा पागल आया, पता नहीं हमारा घर अपवित्र गया। प्रभुपाद ना थोड़ी सी सेवा करके गया, ये टिश्यू पेपर तो देके गया ना, उसमें भी अच्छाई देख दी, उसमें भी अच्छाई देखी कि कुछ आया, कुछ तो दे गया, आया था तो कुछ दे गया, काम आएगा ना, तो उसमें भी अच्छाई दिख दी। एक भक्त अभी रहे नहीं, पहले यहाँ प्रसाद लेने आते थे, वो जब आए तो सब कहते थे तो क्रेजी है, पागल है, लेकिन प्रभुपाद ने नहीं, नहीं अपना शिष्य बना लिया और यहाँ कुछ करता, बड़ा बड़े संस्कृत बहुत बड़े पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया संस्कृत, वो उसको पीटर क्रेजी कहते थे, वो कुछ करते होके बहुत बड़ा विद्वान इतना हुआ कि संस्कृत के अंग्रेजी भाषा में पुस्तक। वो प्रभुपाद को वो गुण दिखे, सबको नहीं दिखे, हर एक के अंदर गुण है, किसको दिखता है। इसका मतलब हर एक को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और हर एक के अंदर भगवान की सेवा में लगने के लिए कोई ना कोई गुण है। हम क्या देखते हैं, हम गुण को छोड़ के अवगुण को देखते हैं। अवगुण को जब भी हमने देखना शुरू कर दिया तो मान वैकुंठ का वातावरण बिगड़ गया और द्वेष और ईर्ष्या आ जाएगी। और भगवत गीता के में भगवान लिखते हैं जो अनसुए हैं उनको ही ये मैं गीता का ज्ञान देता हूं, नहीं तो गीता हम पढ़ पढ़ के पूरी उम्र बिता देंगे लेकिन गीता हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। अनसुए वे, ये किसको गीता समझ में आएगी, ये पहला श्लोक है नवे अध्याय का। क्या है पहले श्लोक नवे अध्याय का, इदम इदम तुते गोहत्मा में गोहत्मम प्रवक्षामि अनुसूयवे, तुम्हारे को ये बहुत गुह्य ज्ञान में अर्जुन इसलिए देता हूं कि तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, तुम गुण में दोष नहीं देखते हो, इसलिए तुमको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। और 18वें अध्याय में आएगा जो अनुसूय हैं उनको ये ज्ञान देना, दूसरों को मत बताना, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं उनको मत देना, ना तपस्या है, जो तपस्या नहीं करते उनको मत देना। इसमें 12वें श्लोक में शायद तपस्या का वर्णन है, प्रभुपाद ने पूरा लेक्चर तपस्या के ऊपर दिया है। तपस्या का मतलब प्रभुपाद का, तपस्या का मतलब तप, तप का मतलब बुखार, तप किसको बोलते हैं, फीवर को, मालूम है फीवर को तप बोलते हैं, तप का मतलब है कि फीवर। तो हमारे को जब तक अपने को बुखार की तरह पकाएंगे नहीं तब तक भगवान की भक्ति नहीं हो सकेगी, तो तपस्या करनी पड़ेगी। तुलसी की तपस्या की महिमा है, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तब भगवान विष्णु के साथ जाके साथ हाथ मिलाया, और तुलसी ने तपस्या की तो भगवान के गले में माला बन के और भगवान के चरणों में उसको निवास मिला है। तो तपस्या हमारा जीवन है और तपस्या जब हम करेंगे तो ईर्ष्या आस्ते आस्ते हमारे अंदर से निकलना शुरू होगी। ये बहुत बड़ी तपस्या है कि दूसरे का सुख दे के नहीं जलना, ये बड़े से बड़ी तपस्या है, ये करना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी तपस्या है कि दूसरे का, दूसरे से हम एनवियस दूसरे से न हो और दूसरे को से हम है, उसको हेट न करें। द्वेष का मतलब किसी को हेट करना, हाँ, किसी को धिकारना, तो ये जो जब जब ये दो चीजें जब तक मंदिर में रहनी ही नहीं चाहिए, भक्तों के बीच में हरेक में अच्छाई देखनी चाहिए, हरेक को भगवान की सेवा में ज्यादा लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ईर्ष्या और द्वेष रहित समाज बनाना प्रभुपाद जी का उद्देश्य था, इसलिए प्रभुपाद ने कहा लव एंड ट्रस्ट। ईर्ष्या और द्वेष को निकालना है तो दो काम करना पड़ेगा, प्रेम और विश्वास को। जब विश्वास होगा तो द्वेष नहीं करेंगे और प्रेम होगा तो ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने शुरू क्या किया, लव एंड ट्रस्ट। भक्तों के बीच में प्रेम और विश्वास होना चाहिए, द्वेष और ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो इस श्लोक से हमको वैकुंठ का वातावरण बनाना है और हमको प्रेम से आगे बढ़ के चेतना महाप्रभु की ये इच्छा कि पूरे विश्व के अंदर गांव गांव में हरे कृष्ण मंत्र गूंजेगा, ये कार्य पूरा करना है तो हमको ईर्ष्या और द्वेष को हृदय से निकालना पड़ेगा, प्रेम और विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। तब हम एक नहीं हजारों हैं, दो एक और एक दो नहीं एक और एक ग्यारह हो जाएंगे, तो फिर हम पूरे विश्व में प्रचार करने के इस कार्य को पूरा करके प्रभुपाद जी के जो जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का, चेतना महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए ये दो चीजें अंदर से निकालनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंदर में आग जलती रहती है, सुइयां लगती रहती है दूसरे का सुख देखकर, तब हम दूसरों को कहां से सुख देंगे। जब हमारे ही अंदर में सुइयां लग रही हैं तो फिर दूसरों को कहां से हम फूलों से सजाएंगे। तो इसलिए अंदर से जब हमारे द्वेष निकलेगा तब हम दूसरों को सुख शांति दे सकते हैं। हमारे अंदर शांति वैकुंठ का वातावरण, यहां शब्द क्या आया, कैसा मन सा कैसा है, वैकुंठ का माइंड प्रभुपाद ने लिखा है। ये शब्द एक बहुत बड़ा सुंदर था, दूसरा भी वो शब्द था सुमनसा, वैकुंठ माइंडेड। हमको क्या बनना चाहिए, वैकुंठ की मानसिकता क्या होती है, दूसरे में द्वेष नहीं देखना, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना। जब तक वैकुंठ की मानसिकता नहीं आती है तब तक संसार में हम एक दूसरे के बाल खींचते रहेंगे। इसलिए हमारे को सिर मंडवाना पड़ता है, कोई खींचे नहीं, चोटी सिर्फ रखते हैं, वो भी पीछे होती है, किसी का हाथ नहीं पड़े तो अच्छा है, नहीं तो बाल खींचा खींची ज्यादा होती। तो एक इसका ये भी लाभ है, बाल है ही नहीं, झंझट खत्म। तो ये बहुत, इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन कीजिए कि बड़े से बड़ी तपस्या क्या है, कोई कहे को तो बड़े से बड़ी तपस्या ये है कि भक्तों से ईर्ष्या न करें और द्वेष न करें, ये बड़े से बड़ी तपस्या है। इस तपस्या में जो तप गया वो भगवान का प्रिय हो जाएगा और तुलसी की तरह वो भगवान के गले का हार बन जाएगा। तुलसी तपस्या के कारण इस स्थान को प्राप्त किया है बड़े कष्ट सहकर। तो ईर्ष्या और द्वेष को हटाकर वैकुंठ की मानसिकता बनाना, प्रभुपाद जी इच्छा के अनुसार प्रेम और विश्वास भक्तों के बीच में, और प्रेम भगवान से और भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास, ये दो तरफ प्रेम और विश्वास चलता है, भक्तों से मैत्री और प्रेम और विश्वास, और भगवान से प्रेम और भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास, श्रद्धा हमारी, तो फिर हमारी गाड़ी इस संसार में बड़ी सुख से चलेगी। एक दूसरे का हाथ हाथ से संग चालो, हरि बोलो, महाप्रभु की शिक्षा दूसरे शब्दों में संग चलो, एक दूसरे का हाथ हाथ में दे के चलो। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा करना चाहिए, एक दूसरे को साथ साथ लेके चलना है, कोई कमजोर है तो उसको हाथ दे के पकड़ के आगे चलाना है और अपने से आगे करके उसको सेवा में लगाना है। तो जो आदमी जितना वरिष्ठ होता है वो अपने सामने आगे इतनी जगह छोड़े कि छोटे बहुत उसके बीच में, जैसे बच्चे उनको आंगन में खेलने के लिए जगह रखते हैं ना, ऐसे भक्तों को आगे थोड़ी जगह रखनी चाहिए ताकि वो सेवा कर सके। ये बहुत आवश्यकता है। यहाँ भागवत के इस श्लोक के सब पुष्प तो है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और फिर बहुत और वैकुंठ का वर्णन आएगा, वहाँ के विमानों का वर्णन आएगा, वहाँ के रहने वालों का वर्णन आएगा, वहाँ के स्त्री पुरुषों के प्रेम का वर्णन आएगा, लेकिन केवल प्रेम तक ही करते हैं क्योंकि भगवान की सेवा में लगना है, भोग की वांछा है ही नहीं, भगवान से अलग होके भोग करने की वांछा है ही नहीं वैकुंठ में। तो किसी का कोई सुझाव है, कुछ जिज्ञासा है, वैकुंठ में तुलसी का वर्णन हो रहा है। और वैकुंठ से भगवान की कृपा से ये तुलसी भगवान ने इस धरती के ऊपर भक्तों के भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकट की है। भक्तों को उसका आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण। तुलसी का कभी बैठ के अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, तुलसी के जीवन का और तुलसी की तपस्या का। मेरे ख्याल में फोलियो में तुलसी के ऊपर एक पूरा पुस्तक है छोटा। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? बोलो माता जी। भगवान श्री कृष्ण के होते हुए अभिमन्यु को 6 आदमी ने मार दिया था, भगवान उधर थे। द्रौपदी के 5 बेटों को सोए हुए रात को मार के गया था अश्वस्थामा में, भगवान श्री कृष्ण उस थे। कृष्ण किसको कैसे कहां ले जाना चाहता है वो जाने। हम शरीर को ढूंढ रहे हैं, आत्मा के लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये सब जब घटनाएं घटे है तब समझना चाहिए कि शरीर और आत्मा में अंतर है। आत्मा कृष्ण से प्रेम करती है, शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, चाहे पहाड़ से गिरे, चाहे आग में जले, चाहे डूब जाए, लेकिन कैसे भी शरीर तो जाना ही है। तो इसलिए ये बड़ा आश्चर्य है कि साधु संतों के आने जाने के रास्ते का भी पता नहीं लगता है, वो कैसे कब जाते हैं ये समझ में नहीं आता है। इसलिए इसका ऐसे ही चिंतन करना चाहिए, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, तो भगवान के सामने सब कुछ हुआ। हाँ जी, भक्तों के लिए सब भगवत इच्छा से होता है, उनका यहाँ आना जाना। वैसे भी भक्ति विनोद ठाकुर का ये कि कोई समझता है कि वैष्णव का देहांत होता है वो मूर्ख है, वैष्णव जब यहाँ रहता है तो भगवान का प्रचार करता है, वापस जाता है तो भगवान की सेवा में लगता है, तो दोनों ही काम उसके, चाहे यहाँ रहे या वहाँ रहे। ये भक्ति विनोद ठाकुर का हरिदास ठाकुर की समाधि के ऊपर जो शब्द लिखे हैं वो सब भगवान के परम वैष्णव भक्तों के से लागू होते हैं। वो बड़ा हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय।